ولتجدنهم أحرص الناس على حياة. اور البتہ تم ضرور حریص ترین پاؤ گے لوگوں میں سے زندگی کے اوپر. ان لوگوں کو آپ زندگی کا زیادہ حریص پائیں گے. نبی یہود جو ہیں, آپ اگر ان کو کہیں موت کی تمنا کرو, کبھی بھی نہیں تمنا کریں گے, کیونکہ ان کو بھی پتا ہے کہ انہوں نے کچھ نہیں کیا ہوا آگے کے لیے. اب ہمیں بھی دیکھ لیں, ہم ایسے جتنے مرضی دعویٰ کرتے رہیں, لیکن اگر کہیں گے موت کی تمنا کرو تو ہمیں پتا ہے کہ ہم نے کچھ بھی نہیں کیا ہوا. ڈرتے ہیں بھی ہم مرنے سے. کوئی کسی کو بتا دے یا جائے گا کہ بھائی اللہ معاف کرے, کوئی یہ آپ کو یہ بیماری ہو گئی ہے جس کا جس میں آپ نے بس اتنے دن ہی آپ رہ سکتی ہیں, اس طرح سے کوئی بات کہہ دیا, کسی کو کینسر کا کہہ دیا جائے, پھر دیکھیں ہماری حالت کیا ہو جاتی ہے. کیا حالت ہو جاتی, کیسے رونے دھونے ہمارے مچ جاتے ہیں کہ ہائے اب ہمیں جانا پڑے گا یہاں سے, کیونکہ ہم نے تو آگے کے لیے کچھ بھیجا ہی نہیں. جب آگے کے لیے کچھ نہیں بھیجا تو پھر ظاہر سی بات ہے پھر آگے جانا کون چاہے گا. جس کو وہاں پہ یقین ہے اللہ کی رحمت کا کہ میرے لیے اللہ کی رحمت شامل حال ہوگی, اس کے لیے تو دن دنیا کا دن دنیا میں رہنا تو قید خانے کی طرح ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا, دنیا تو مومن کے لیے قید خانہ ہے, کافر کے لیے جنت ہے. اب ہم نے جو دنیا کو جنت بنایا ہوا, تو اب ہم جنت سے پھر ادھر کیسے جائیں ویرانے کی طرف. اگر ہماری زندگی قید خانہ ہوتی نا یہاں پہ, کہ ہم نے اپنے آپ کو ریسٹرکشنز میں باندھا ہوا ہے, اللہ کی فرما برداری میں زندگی گزار رہے ہیں, تو پھر تو ہم نے کہنا تھا کہ بس میری رب سے کب ملاقات ہو, میں نے اس کے لیے آج تک تیاری کی ہے, اس کے لیے خود کو باندھ باندھ کے رکھا ہے, اس کے لیے قربانیاں دی, اس کے لیے راتوں کو جاگی, اس کے لیے دن کو بھوکی رہی, پھر تو اچھے اس کے اندر ہمیں وہ ہونا چاہیے. لیکن ہمیں پتہ چل جائے تو ہماری حالت کیا ہوتی ہے, دعوے ہم جو بھی کریں اپنی نیکی پارسائی کے, تو خالی ہاتھ ہیں. ہم نے اپنی کوئی کمائی کرنی ہے, ٹھیک ہے, کہ ہمیں موت سے پھر ڈر نہ لگے. تو تم اے نبی ان کو سب سے زیادہ حریص پاؤ گے زندگی کا, کہ یہ تو کبھی بھی موت اپنے لیے چاہتے ہی نہیں ہیں. ان کو تو یہ ہر وقت یہ ہرس لگی ہے, فکر لگی ہے کہ ہم اور زیادہ جی لیں, اور زیادہ جی لیں, ویسے جنت کے دعوے دار بنتے ہیں. تو ان کی ہرس اس لیے ہے کہ آگے نہیں کچھ بھیجا. وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا, اور دنیا میں انہوں نے دل بہت لگایا نا, اور وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا. اچھا یہاں تک اگر ہم اس کو پوز کریں تو پھر ان کی زندگی کے اوپر ہرس مشرکین سے بھی زیادہ ہے. یعنی مشرق تو شرک کرنے والے, وہ تو اللہ کو مانتے ہی نہیں, اللہ اکبر, ان کی تو ہرس ہے ہی زندگی پہ, لیکن ان کی تو ان سے بھی زیادہ ہے. یہ تو کبھی جانا ہی نہیں چاہتے یہاں سے, دل جو اٹکا ہوا ہے یہیں پہ دنیا میں. جو پہلے ہم نے ایک دفعہ بات کی تھی نا, کہ وہ نے پوچھا تھا خلیفہ نے ایک تابعی سے کہ کیا موت سے کیوں ڈر لگتا ہے, تو انہوں نے کیا فرمایا تھا کہ تم نے اپنی دنیا کو آباد کیا ہوا ہے اور اپنی آخرت کو ویران کیا ہوا ہے, تو اب آبادی سے ویرانے میں جاتے ہوئے ڈر لگتا ہے. اگر ہم نے اپنی دنیا کو ویران کیا ہوتا اور آخرت کو آباد کیا تو پھر نہ ڈر لگتا. تو اس لیے یہ تو اتنے حریص ہیں دنیا کے, دنیا میں رہنے کے, کہ مشرکین سے بھی زیادہ. اچھا مومن کے لیے دنیا میں زندگی کی ہرس ہونی چاہیے کہ نہیں, کیا زندگی کی ہرس ہونی چاہیے یا موت کی خواہش ہونی چاہیے؟ ابھی تو ہم نے آپ بات کریں کہ موت کی خواہش نہیں ہونی چاہیے, تو پھر کیا ہونا چاہیے؟ زندگی کی ہرس بھی کہا گیا کہ ان کو زندگی کی ہرس ہے, تو پھر اب کنفیوژن ہو جائے گی کہ پھر ہمیں ہونا کیا چاہیے, یعنی کیا اپنے لیے زندگی مانگنی چاہیے یا پھر موت کی تمنا رکھنی چاہیے, وہ بھی نہیں رکھنی تو پھر زندگی کی ہرس بھی اچھی نہیں ہے, تو کیا کیا جائے پھر؟ بات یہ ہے کہ زندگی کی تمنا اتنی ہو, زندگی کی خواہش صرف اس لیے ہو کہ اس میں نیک اعمال کر سکو, بس. سمجھ آئی؟ ایسی ہونی چاہیے. اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کوئی موت کی خواہش نہ کرے, نہ موت آنے سے پہلے اس کی دعا مانگے, کیونکہ جب تم میں سے کوئی آدمی فوت ہو جاتا ہے تو اس کے اعمال منقطع ہو جاتے ہیں, یعنی کٹ ہو جاتے ہیں, بند ہو جاتی اس کی بک, اور مومن کی عمر تو بھلائی ہی کے لیے زیادہ ہوتی ہے, یعنی نیکی کے لیے زیادہ ہوتی ہے. مسلم کی حدیث ہے, یعنی जिंदगी ज्यादा लेने का एक्चुअल कॉन्सेप्ट क्या है, क्या कॉन्सेप्ट होगा कि मुझे जिंदगी ज्यादा मिले, इसके पीछे क्या होना चाहिए एक मोमेंट के लिए? फन, फन करना है, बच्चों की शादियां करनी है और कमाइयां करनी है, बच्चों के लिए कुछ छोड़ के जाना है? नहीं, ज्यादा नेकी पाने के लिए, कि मैं से ज्यादा जमा कर लूं और नेकी जमा कर लूं और नेकी जमा कर लूं। क्योंकि एक बद्दू आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया और उसने पूछा, लोगों में सबसे बेहतर कौन है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसकी उम्र लंबी हो और उसका अमल नेक हो। यानी जिसको अपनी इतनी लंबी उम्र मिल जाए और वो उसमें नेकियां करता जाए, वो सबसे बेहतर है। तो ये उम्र जो है ना, मर्जियां पूरी करने के लिए नहीं मिली, ये उम्र जो है ना, फन करने के लिए नहीं मिली। ये उम्र किस लिए मिली है? कि इंसान नेकी बढ़ाए। लेकिन इन लोगों का क्या हाल है? ये हरीस हैं दुनिया के, इसलिए कि बस यहीं रहना चाहते, इसको छोड़ के नहीं जाना चाहते। इसीलिए आप देखें, ये लोग ना अपनी लाशों को भी प्रिजर्व करवाने के लिए लाखों खर्च करते हैं। क्रायोनिक्स कहते हैं शायद उसको, कि जो प्रिजर्वेशन का इनका प्रोसेस होता है। कहते हैं कि एक दिन ना हम उठ जाएंगे दोबारा, ना हम उठ जाएंगे जब दोबारा कोई ऐसा कोई रिसर्च होगी कि मुर्दों को जिंदा करने की। इंसान तरक्की तो करता जा रहा है, इल्म में आगे आगे पहुंचता जा रहा है, तो कभी ना कभी कोई रिसर्चें ऐसी होंगी कि भाई मुर्दे भी जिंदा हो जाए। तो जब वो रिसर्च वगैरह हो जाए ना, तो फिर हमें उठा के बिठा देना, तब तक हमारे हमें प्रिजर्व करके लिटा। तो उसको प्रिजर्वेशन के लिए क्या क्या करते हैं आप इसके ऊपर सर्च करके देख सकते हैं। इतने यानी ये हरीस हैं कि हम मरे ना, बस यहाँ से जाए ना। इनमें से एक एक ये चाहता है कि काश वो हजार साल तक जिए। इतनी इनकी ख्वाहिश है, ये हजार हजार साल की हमें जिंदगी मिली, जी भरता ही नहीं है इनका दुनिया से। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसलमानों के लिए भी पता है क्या फरमाया था? मुसलमानों में भी ऐसी हिर्स आ जाएगी, बस कि हम बस जिंदा रहें, जिंदगी मिले। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, एक वक्त आएगा कि दुनिया की कौमें तुम पर एक दूसरे को ऐसे दावत देंगी जैसे खाने में दावत दी जाती है। अरे को बुलाया जाता है ना, खाना सामने रख दिया जाता है, तो कहने वाले कहते हैं आओ आओ तुम भी आके शामिल हो जा। तो किसी ने कहा, क्या उस वक्त हमारी तादाद कम होगी कि गैर कौमें हमें हमारे ऊपर इस तरह दावा देंगी? यानी हमें नोचने के लिए, हमें भंबोड़ने के लिए मुसलमानों को गैर कौमें एक दूसरे को दावत देंगे कि लूट लो इनको, खा लो इनको। तो वो साहबी ने पूछा, क्या उस वक्त हम इतने कम होंगे, यानी वो हम पे ऐसे गालिब हो जाएंगे? फरमाया, नहीं, बल्कि उस वक्त तो तुम्हारी तादाद बहुत ज्यादा होगी, बहुत ज्यादा होगी तुम्हारी तादाद, मगर तुम्हारी हालत ऐसी होगी जैसे झाड़ सैलाब पे होती। झाड़ वो तिनके नहीं होते, सैलाब का पानी जा रहा होता ऊपर, खसोखा शाक होते, उस तरह तुम्हारी हालत होगी। और अल्लाह ताला तुम्हारे दुश्मन के दिलों से तुम्हारे रोब को निकाल देगा, तुम्हारी हैबत निकल जाएगी दुश्मनों के दिलों से, और तुम्हारे दिलों में वहन पैदा कर देगा। वहन क्या होता है? पूछा गया, ये वहन क्या चीज है? फरमाया, दुनिया की मोहब्बत और मौत का खौफ। जब किसी मुसलमान कौम का यह हाल हो जाए ना, उसका रोब ही खत्म हो जाता है, फिर सारे लुकमा तर बनाते हैं कि आ जाओ इनको खा लो। नहीं, ऐसे हैं दुनिया से चिपके हुए कि हमें कहीं मौत ना आ जाए, यही आज हमारी हालत है। अल्लाहु अकबर। हालांकि मुसलमान जो मोमिन है, ठीक है मौत की तमन्ना नहीं, लेकिन जो मोमिन है, आप खुद सोचे कि उसके लिए तो अल्लाह ताला से मुलाकात का जरिया है मौत। उसके लिए तो ये हाल है कि यानी वो तो ना डर होता है कि जो वक्त अल्लाह ने मेरे लिए मुकर्रर कर दिया उसी वक्त में आनी है, उससे पहले नहीं आएगी, वो ना डर रहता है। और ये देख लें, ये हजार साल भी क्या, अगर हजार साल की जिंदगी मिल भी जाए तो भी क्या, कई लोगों को इतनी इतनी लंबी उम्रें मिलती हैं, उसके बावजूद उनका कोई अमल नहीं होता। तो हजार साल की जिंदगी भी, इसीलिए अल्लाह ताला ने फरमाया, वमा हुआ भी मुजहजिही मिनल आदा भी अन युअम्मरा, ये लंबी उम्र उनको अजाब से बचाने वाली नहीं है, इनको नुकसान से नहीं बचा सकती ये अल्लाह के अजाब जो जहन्नुम है, उससे चाहे हजार साल भी जी लेंगे फिर भी अगर अंजाम क्या है आखरत का अजाब, तो इस हजार साल की जिंदगी की क्या फायदा, इससे तो नहीं अजाब टलेगा यहां पे। यहां तो हो ना कि दुनिया में हजारों साल रह के फिर उसके बाद यहीं पे रहना हो तो फिर भी बात समझ आती है। अगर हजार साल भी रह के फिर उसके बाद अजाब ही है तो क्या फायदा इस हजार साल की जिंदगी का। दुनिया के हजार साल भी आखिरत के मुकाबले में ऐसे हैं जैसे 1 सेकंड। अगर आपको कहूं मैं, चलें अब इन्फिनिट लाइफ को तो हम जाहिर है कुछ भी फिगर्स नहीं दे सकते, कोई नंबर नहीं दे सकते, लेकिन चलो आखिरत की जिंदगी को अगर हम कहें हजार सदियां, 1000 सेंचुरीज, तो 1000 सेंचुरीज के मुकाबले में जो 1 सेकंड, 1 सेकंड गुजरा है ना, ये 1 सेकंड गुजर गया, ठीक है, ये दुनिया की जिंदगी है। और 1000 सेंचुरीज कितनी ही लंबी होती हैं, 1400 साल तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गुजरे हुए हो गए हैं, तकरीबन 2000 साल ईसा अलैहि सलाम को गुजरे हुए हो गए। 1000 सेंचुरीज कितनी लंबी होंगी, हजारों साल, 1100 साल। तो सोचें कि आखरत दुनिया के मुकाबले में इतनी लंबी है, 1 सेकंड की क्या कदर कीमत होगी। या जैसे एक कतरा समंदर के अंदर हो, ऐसे ये दुनिया और समंदर आखरत समझ लें। तो कितने भी हजारों साल की जिंदगी मिल भी जाए, अगर एक इंसान जिंदगी से फायदा नहीं उठाता ना, तो वो 1000 साल भी किसी काम के नहीं है। और अगर किसी को थोड़े साल भी मिल जाएं लेकिन वो अपनी जिंदगी से फायदा उठा ले तो वो बहुत बेहतर है। आप देखें हमारे असलाफ जो थे वो अपनी जिंदगियां जाया नहीं करते थे, वो जिनको छोटी उम्र में मिली उन्होंने, आप कई लोगों के बारे में सुनते हैं ना कि फ्रॉम रिवर्टेड मुस्लिम 30 साल 40 साल की उम्र में वो इस्लाम लेकर आए, फिर वो फलानी जगह गए, फिर उन्होंने वहाँ पढ़ा, 60 साल की उम्र में फौत भी हो गए, लेकिन उन्होंने इतना काम किया, इतनी कोई किताबें लिखी, इतना ऐसे किया, कई लोगों के बारे में पता चलता है। आप देखें जो अल्लामा इब्ने जरीर है, बहुत बड़े आलिम थे, उनकी तफसीर तबरी है बहुत मशहूर है, 40 साल तक बराबर रोज़ाना 40 पेजेस लिखा करते थे। सोचे तो हिस्ट्री की उन्होंने 14,000 सफ़ों के ऊपर किताब लिखी है, इसके अलावा भी बहुत सारी और किताबें लिखी, और उस वक़्त हाथों से लिखते थे, कोई प्रिंटिंग नहीं थी। तो आप देखेंगे कई लोग छोटी उम्र में भी बहुत कुछ कर जाते हैं, और निकम्मे लोग 100-100 साल भी जीते हैं तो कहते हैं लंबी उम्र हो जाए, लंबी हो जाए, तो जिंदगी पा के भी कुछ नहीं कर पाते। तो ये लंबी उम्र इंसान को बचा नहीं सकती, याद रखो। अल्लाहु अकबर, ये किसी को अजाब से बचा नहीं सकेंगी अगर इनको 1000 साल भी मिल जाए। वल्लाहु बसीरुम बिमा यअमलून, अल्लाह देखने वाला उसको जो वो अमल करते हैं, अल्लाह ताला को सब पता है जो ये अमल कर रहे हैं, उसके सामने कोई चीज छुपी भी नहीं है। कुल मन कहना आदू वल्ली जिब्रीला, कह दीजिए कि जो है दुश्मन जिब्रील का, जिब्राइल अलैहिस्सलाम का। आप ये क्या बात हो रही है, यहाँ से आगे यहूद की इस बात का जवाब दिया जा रहा है कि वो एक दफ़ा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए, कहने लगे हमें इन सवालों का जवाब दे दें तो हम आपको मान लेंगे। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब दिए, पूछने लगे आपको किसने ये बताए हैं जवाब, कौन आपके पास लेकर आता है वही, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जिब्राइल अलैहिस्सलाम। तो कहते हैं जिब्राइल तो हमारे दुश्मन है, और अगर वो आपके पास आते हैं तो हमने कोई नहीं मानना, यानी ना मानने के भी बहाने। और वो जिब्राइल अलैहिस्सलाम को बुरा समझते थे, जिब्राइल अलैहिस्सलाम के साथ दुश्मनी रखते थे। और वजह क्या थी, एक तो इसकी वजह ये थी कि वो कहने लगे कि ये जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेसत से पहले जिब्राइल अलैहिस्सलाम जो अजाब लेकर आए कौमों पर, हमारी पिछली कौमों पर वो जो अजाब आया वो इनकी वजह से आया, तो इसलिए जो है ना हम उनको अच्छा नहीं समझते। दूसरी क्या बात थी कि जिब्राइल अलैहिस्सलाम वही लेकर आते हैं, और वही से इनको कोई इंटरेस्ट नहीं था, कोई इनको मोहब्बत नहीं थी, बल्कि अल्लाह के हुक्म तो इनको बड़े मुश्किल लगते थे। तो अब इनको जिब्राइल अलैहिस्सलाम ही बुरे लगने शुरू हो गए कि ये लेकर आते हैं ये इतने इतने मुश्किल हुक्म, इनको ज्यादा मोहब्बत किससे थी? मीकाईल अलैहिस्सलाम से, कि वो रिस्क के फरिश्ते हैं, तो बारिश बरसती है, रिस्क पैदावार, और ये इस चीज़ से ज़ाहिर है इनको हमेशा से ही बड़ी मोहब्बत थी माल से, तो मीकाईल अलैहिस्सलाम बड़े पसंद थे। ये तीसरी एक और वजह भी थी कि वो सबसे बड़ी जो वजह है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबुवत क्यों मिल गई, ये बात पहले से हम पढ़ते आ रहे हैं कि इनको बहुत ज़्यादा इस चीज़ का यानी एक दिल में रंज था कि जो है क्यों, और दुश्मनी थी इस बात से कि क्यों आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबुवत मिली, हमें बनी इसराइल में ही आनी चाहिए थी। तो इस बात की वजह से वो कहते थे कि ये जिब्राइल का कसूर है, अलैहिस्सलाम का कसूर है कि वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे वही लेके चले गए, हालांकि उनको वही लानी चाहिए थी किसी इसराइली के ऊपर, ठीक है। तो ये सारा कसूर किसका हुआ? वही लाने वाले फरिश्ते का। तो इसलिए वो जिब्राइल अलैहिस्सलाम की शान में गुस्ताखियां करते थे और कहते थे हम तो उनके दुश्मन हैं। अब आपने कह दिया है कि वो आपके पास वही लाते हैं, तो हमारा तो बस फिर हमने नहीं मानना आपको। और पता है एक फ़िरका ऐसा भी है जो कहता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बजाय हज़रत अली के ऊपर वही आनी थी, उन्होंने नबी बनना था लेकिन गलती से जो है ना वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नऊज़ु बिल्लाह, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबी बन गए। अल्लाहु अकबर। हालांकि ये देखें अल्लाह ताला ने फरमा दिया फ़इन्नहु नज़्ज़लहु अला क़ल्बिका बिइज़्निल्लाह, हालांकि बेशक वो नाजिल उसको किया ऊपर तेरे दिल के अल्लाह के इज़्ज़न के साथ। अल्लाह ताला ने नाजिल किया, अल्लाह के इज़्ज़न के साथ वो नाजिल होते हैं। आपको पता है जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दफ़ा शिकवा किया था जिब्राइल अलैहि सलाम से कि आप देर से क्यों आते हैं वही लेके, मैं इंतज़ार करता रहता हूँ, तो उन्होंने फरमाया था कि हम नहीं नाजिल होते मगर अल्लाह के हुक्म से। उसका हुक्म होता तो हम नाजिल हो सकते हैं, हम खुद अपनी मर्जी से थोड़ा ही वही ला सकते। तो जिब्राइल अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला ने फरमाया, और देखें हमने 30वें पारे में भी पढ़ा है ना, थम्मा अमीन, वो बहुत ईमानदार हैं। ऐसा नहीं है कि उनको वही लेने का एक तरफ का कहा गया और वो कहीं और चले गए। यफालून मा युमरून, वो वही करते हैं जो उनको हुक्म दिया जाता है, सारे फरिश्ते ही। तो भाई जिब्राइल अलैहिस्सलाम तो फरिश्तों के सरदार हैं, तो उनसे कैसे ऐसी बात सोचा भी जा सकता है। तो लेकिन ये क्या इतनी दुश्मनी रखा करते थे कि इन्होंने कहा हम इस वजह से हमने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मानना ही नहीं है। तो अल्लाह ताला ने फरमाया ये बात साहब को क्लियर हो जाए कि जिब्राइल अलैहिस्सलाम की अपनी कोई मर्जी नहीं है, बल्कि उनकी अल्लाह ताला के हुक्म से वो उतरते हैं, मुसद्दिकन लिमा बैन यदई, और वो लेके चीज़ उतरते हैं, वो वही लेके उतरते हैं जो तस्दीक करने वाली है, जो आपके आगे है, जो इसके हाथों के आगे यानी दरमियान उसके हाथों के यानी आगे यानी तौरात, तौरात की तस्दीक करती है। ये कुरान जो है ये क्या करता है, अल्लाह का जिब्राइल अलैहिस्सलाम वही लेके आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल पे उतरते हैं, अल्लाह के हुक्म से उतरते हैं, ऐसी चीज लेके उतरते हैं जो तौरात की तस्दीक करती है, जो उसको एंडोर्स करती है, जो कहती है कि वो किताब अल्लाह ही की तरफ से थी। तो हमें दो तीन बातें जो इससे पता चली, एक तो ये कि वही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल पे उतरती थी, ये अल्लाह का कलाम है ना, दिमाग पे नहीं उतरा, दिल पे उतरा। इसको आप लोग भी अगर दिल पे ही लेंगे तो फायदा होगा, अगर दिल पे नहीं लेंगे सिर्फ जुबानों तक ही रहेगा तो कोई फायदा नहीं मिलेगा ना। इसके रेसिपिएंट कौन होना चाहिए? दिल, दिल इसको रिसीव करे। और दिल पे लेने के लिए आपको गौर से सुनना जरूरी होगा। अगर ध्यान कहीं और है, दिल कहीं और है, दिल में ये है कि अभी मैंने इसके बाद ये काम करने हैं, वो काम करने हैं, फलानी जगह जाना है, इधर से आना है, तो फिर मुझे बताएं कि फिर कैसे वो दिल रिसीव करेगा इस वही को। इसलिए दिल पे इस वही को लेना, ये दिल पे ही उतरी है, ये दिल से कोई पढ़ाएगा आपको तो आपके दिल तक जाएगी, आप भी दिल पे लेंगे तो आपकी दिल की दुनिया बदलेगी, और दिल की दुनिया बदलेगी तो जिंदगी बदल जाएगी, अमल बदल जाएगा। तो ये दिल से दिल तक का सफर है, समझ आई? पढ़ाने वाले को भी दिल से पढ़ाना होगा तो पढ़ने वाले के दिल पे उतरेगी, पढ़ने वाले को भी अपने दिल के दरवाजे खोलने पड़ेंगे, दिल को हाजिर करना पड़ेगा। तो देखें, एक रिसीविंग एंड होता है ना, और एक यानी जो गिविंग एंड है वो होता है, एक गिव करता है एक रिसीव करता है, दोनों तरफ से देखें मुताबकत होगी तो फिर ही फायदा होगा ना। तो इसको दिल पे लेना ज़रूरी है, क्योंकि ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के भी दिल पे उतरा और अल्लाह के इज़न के साथ और तस्दीक करने वाली, ये तो बात हम पहले भी कर चुके हैं। वह हुदन, और इसमें हिदायत है। ये क्या है? ये आपका आपके लिए गाइडेंस है, जन्नत में जाने का रास्ता बताती है, अल्लाह ताला की पसंद और नापसंद का रास्ता बताती है, इस दुनिया में इज्जत पाने का रास्ता बताती है। तो ये हमने तो इसको सिर्फ मस्जिद तक ही महदूद कर दिया ना, लिमिटेड कर दिया, हालांकि ये पूरी जिंदगी गुजारने के लिए एक गाइडलाइन है, हुदन है, हिदायत है। बुशरा, और खुशखबरी है किन लोगों के लिए? मुर्दा दिलों को जिंदा करने के लिए, ये एक उनका मुर्दा दिलों का जंग दूर करने के लिए ये किताब है, खुशखबरियां देती है। लेकिन किन को? ईमान वालों को, लिल मोमिनीन, ईमान वालों के लिए इसमें बड़ी खुशखबरी है कि कोई नहीं, थोड़े दिन की मुशक्कत है, फिर उसके बाद खुशियां ही खुशियां हैं, फिर उसके बाद अमन ही अमन है, फिर उसके बाद नेमते ही नेमते हैं, तुम फिक्र ना करो। और देख लें यहाँ पे हुदन, हुदन का रूट क्या है? हा दालिया। और हदिये का रूट क्या है? हदिया जो होता है तोहफा, उसका भी रूट हा दालिया है। तो ये हदिया है अल्लाह की तरफ से। अमूमन हम तोहफों की बहुत कदर करते हैं, जो कोई हमें तोहफा देता है हम उसका बहुत शुक्रिया करते हैं और तोहफे को बहुत संभाल के रखते हैं, बहुत उसको, और जिसका तोहफा हमें ज़्यादा पसंद आता है हम उस तोहफे को इस्तेमाल भी करते हैं, है ना। जब आप इस्तेमाल करते हैं तो तोहफा देने वाले को खुशी होती है ना। अगर आप तोहफे को उठा के अपने स्टोर में पीछे कहीं रख दें, आपने मसलन किसी को तोहफा दिया और वो स्टोर में इस तरह पीछे रख दे और आपको कहे थैंक यू वेरी मच, बहुत पसंद आया मुझे आपका तोहफा, आप किसी दिन उसके घर जाएं और आप देखें कि वो पीछे स्टोर में इसने रखा हुआ है, तो आप क्या कहेंगी? खुश होंगी या उदास होंगी? ये इसने मेरी कदर की तोहफे की, मैंने इसको इतने दिल से दिया, इसने इतनी खुशी से लिया और बड़ा शुक्रिया अदा किया, ये इसने कदर की है इसकी। दूसरी सूरत ये हो सकती है कि आप देखती हैं कि उसने वो तोहफा पहना या इस्तेमाल किया, तो आप देखती हैं वो कहते हैं ये देखो ये जो आपने दिया था ना, ये मैं अब इस तरह यूज़ कर रही हूँ, तो आप इतनी खुश होती हैं कि इसने मेरे तोहफे की कदरदानी की है। और अल्लाह ताला ने जो आपको तोहफा दिया उसके बारे में आपके क्या अंदाज़ है, क्या तरीक़ाकार है इसके साथ, क्या रवैया इसके साथ, इस तोहफे की आपने कैसे कदर की है? ये भी हदिया है ना। और हदिया देने वाले को खुशी तभी होगी जब आप इसको अपनी जिंदगियों में लेकर आएंगे, इसको इस्तेमाल करेंगे जिंदगी में, ठीक है। तो ये लेटेस्ट मॉडल है तौरात और इंजील का, मुसद्दिकन लिमा बैना यदई है, और तोहफा भी है, गाइडेंस भी है, गिफ्ट ऑफ गॉड भी है, और खुशखबरी भी है। इसमें खुशखबरियों तो हमें बहुत अच्छी लगती हैं, हैं अच्छी अच्छी कोई हमें खुशी की बातें बताएं, तो फिर इस कुरान से हम क्यों दूर भागते हैं? इसलिए कि यह खुशखबरी तो ईमान वालों के लिए है, यहाँ तो हमारे ईमान में कोई मसला है, क्योंकि अल्लाह ताला की बात गलत नहीं हो सकती। अल्लाह ताला ने फरमाया बुशरा लिल मोमिनीन, तो वाकई खुशखबरी होगी और खुशखबरियां हम सब सुनना चाहते हैं, लेकिन हमें खुशखबरी क्यों नहीं नज़र आती इसके अंदर? कि हमारे ईमान में वो चीज़ नहीं है, जो ऐसा ईमान अल्लाह ताला को मतलूब है वैसा ईमान नहीं है, इसी वजह से हमें खुशखबरी नहीं लगती है। हमें इसमें लगता है कि हाय इसमें हमारे लिए मुसीबत, हाय कुरान की तरफ आ गए तो हमारी तो ज़िंदगी एक मसला बन जाएगी, तो हमारा ये एटीट्यूड इसी वजह से है। ईमान में खलल है। ईमान अच्छा होता, सही होता, ये बीज ईमान का आपका सही होता ना, प्योर होता, तो आपको इस कुरान में खुशखबरियां अपने लिए मिलती, फिर आप भाग भाग के इस कुरान की तरफ आते, फिर से दूर ना भागते, फिर इसकी तरफ भागते। अच्छा। अच्छा आप देख लें, अल्लाह ताला ने वो जो अल्लाह के फरिश्ते के साथ दुश्मनी करता है, तो अल्लाह ताला देखें सुभान अल्लाह अपने दोस्तों के साथ कैसा रवैया रखते हैं, और उनके बारे में अल्लाह ताला किस तरह से उनको डिफेंड करते हैं, और किस तरह से अल्लाह ताला उनके साथ दुश्मनी रखने वाले के साथ अल्लाह ताला का क्या मामला होता है। इसका ये जवाब है, मन काना अदुवल्लाहि व मलाइकतिहि व रुसुलिहि व जिब्रील व मीकाल, जो कोई दुश्मन है अल्लाह का, अच्छा अल्लाह ताला के साथ हो सकता है तो कोई नहीं दुश्मनी रखता हो, लेकिन उसके फरिश्तों का, हो सकता है उसके फरिश्तों में से किसी के साथ दुश्मनी रखे, कि मौत का फरिश्ता है उसके साथ दुश्मनी है कि वो फलाने हमारे प्यारे को ले गया, या अगर वो कोई रसूल ही उसके रसूलों के साथ दुश्मनी कोई करे कि हमें फलाना रसूल जो है ना वो नहीं पसंद है और वो उनके बारे में बुरी बात कहे, वह जिब्रीला और जिब्राइल का, अगर कोई जिब्राइल अलैहिस्सलाम से दुश्मनी रखता है या मीकाईल अलैहिस्सलाम से दुश्मनी रखता है, फइन्नल्लाह अदुवल लिल काफिरीन, तो ये अल्लाह की नज़र में काफिर है और अल्लाह ताला दुश्मन है ऐसे काफिरों का। अगर कोई अल्लाह से नहीं भी दुश्मनी रखता मगर उसको अल्लाह का एक कोई फरिश्ता नहीं पसंद है बस, या एक कोई रसूल नहीं पसंद है, उसका इनकार करता है, जैसे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये लोग इनकार करते थे, तो अब अल्लाह ताला को जितना मर्जी मानते रहो अल्लाह दुश्मन है काफरों का। अब कई लोग पूछते ना, हाय तो क्या हो गया अगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वो लोग नहीं मानते, अगर उनको नहीं पसंद करते तो क्या हो गया, वो फिर वैसे तो इतनी चैरिटी के काम करते हैं, अगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दुश्मनी कर भी ली तो कोई नहीं, जो जिसने अल्लाह के किसी रसूल से दुश्मनी की तो अल्लाह उसका दुश्मन है, और अल्लाह के दुश्मन का अंजाम फिर क्या होगा, जन्नत तो नहीं हो सकती। इसी तरह आपको पता है अल्लाह ताला के किसी औलिया में से किसी का, अल्लाह के जो वली हैं, अल्लाह के जो दोस्त हैं, उनके साथ भी दुश्मनी, अल्लाह के साथ दुश्मनी है, क्योंकि हदीस कुदसी है, अल्लाह ताला फरमाते हैं कि जिसने मेरे किसी दोस्त से दुश्मनी की, मेरे किसी दोस्त से, मेरे किसी वली से दुश्मनी की, उसने मुझसे जंग ले ली, यानी मेरे खिलाफ ऐलान जंग कर दिया। क्या देखें कोई इंसान ये सोच सकता है कि फिर किसी औलिया अल्लाह के साथ यानी दुश्मनी रखे या नफरत रखे या उनके खिलाफ बोले या उनकी को बेइज्जत करे, क्योंकि अल्लाह के जो वली हैं ना, अल्लाह के जो दोस्त हैं, उनके साथ दुश्मनी रखने का मतलब ये है कि उसने अल्लाह के साथ दुश्मनी रखी, कि अल्लाह का वली होना बहुत बड़ा मकाम है, बहुत बड़ा मकाम है। अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफन अलैहिम वला हुम यहज़नून, अल्लाह के वली उनको तो कभी कोई खौफ भी नहीं होगा और कोई गम भी नहीं होगा। जो भी अल्लाह के वली कौन है, जो ईमान लाए, जो बुराइयों से बचते रहे, जिनके दिल में अल्लाह की मोहब्बत है, अल्लाह का वली तो हर एक बनना चाहता है, और हम ये सोचते हैं कि पता नहीं अल्लाह का वली बनने के लिए कोई ख़ास, कोई पता नहीं सुपर नेचुरल होना ज़रूरी है, या कोई करामतें दिखाना ज़रूरी है, या पानी को में आग लगा देना, या इस तरह कर देना, या ऐसी कोई चीज़ें करना, इस तरह से अल्लाह के वली बन जाते हैं, या फिर पता नहीं कोई कोई ख्वाब या कोई ऐसी चीज़ों का बताना, या इस तरह उस वो अल्लाह के वली होते हैं, ऐसी बात नहीं है। अल्लाह का वली कोई भी इंसान बन सकता है, असल बात उसमें है इंसान का एक अच्छा मुसलमान होना, दिल में अल्लाह की मोहब्बत का जज्बा होना, दिल में अल्लाह ताला से सबसे ज़्यादा मोहब्बत होना। देखिए वली तो वही होगा ना, दोस्त तो वही होगा, और उसकी मखलूक से मोहब्बत करना, ठीक है, ये अल्लाह के वली बनने के लिए ज़रूरी है। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जब बंदा अपने रब का वली यानी दोस्त बन जाता है ना, तो उसकी शान दुनिया जहान में निराली हो जाती है, सबसे डिफरेंट हो जाती है। इसलिए कि देखें एक सदर का दोस्त है, किसी बड़े आदमी का दोस्त, वो भी बड़ा ही आदमी समझा जाता है कि ये फलां का दोस्त है, तो जो रब का दोस्त बन गया तो फिर वो कितना बड़ा आदमी बन गया। अल्लाह ताला फरमाते हैं हदीस कुदसी है कि मेरे बंदों में से जो बंदे ऐसे हैं कि जिन पे मैंने जो फ़राइज़ आयद किए हैं वो उनकी अदायगी से मेरा कुर्ब हासिल करते हैं, और जब वो फराइज अदा कर लेते हैं तो फिर नवाफिल के जरिए से मेरा कुर्ब हासिल करने में लगे रहते हैं। तो आखिरकार उन पे वो मंजिल आ जाती है कि मैं उनको अपना महबूब बना लेता हूँ। फिर मैं अपने उस बंदे का कान बन जाता हूँ जिससे वो सुनता है, उसकी आंख बन जाता हूँ जिससे वो देखता है, उसका हाथ बन जाता हूँ जिससे वो पकड़ता है, उसका पैर बन जाता हूँ जिससे वो चलता है। इसका मतलब क्या होता है? यानी वो देखता भी है तो वो ही देखता है जो उसके रब की चाहत है, वो सुनता भी है तो वो सुनता है जो उसका रब चाहता है कि वो सुने, वो बोलता है तो वो बोलता है जो उसका रब चाहता है कि वो बोले, उसका हाथ कान पैर सब बन जाता हूँ। वो चल के भी वहीं जाता है जहाँ उसका रब चाहता है। तो सुबहान अल्लाह, तो अल्लाह ताला के वली बनने के लिए फराइज की अदायगी, नवाफिल के जरिए उसका कुर्ब हासिल करना, ये सब चीजें हैं। तो ये देख लें कि सुबहान अल्लाह, जो अल्लाह का वली बन जाए, अल्लाह का दोस्त बन जाए, सबसे ज्यादा इस चीज के लिए ख्वाहिश होनी चाहिए, दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह ताला मुझे अपने औलिया में शामिल फरमा ले। उसके लिए कोई आपको गद्दी नशीन होने की ज़रूरत नहीं है, किसी मज़ार के ऊपर कब्र के साथ बैठे हो ये औलिया अल्लाह है, नहीं, वो उसकी ज़रूरत नहीं है। ठीक है, आप दुआ मांगा करें और एफर्ट करें। और आप ये देख लें, क्या आज कोई दोस्त आपके लिए इतनी दुश्मनी करेगा किसी से? आपका कोई दोस्त जो हो वो आपकी खातिर इतनी दुश्मनी लेगा, है ना? लेकिन अल्लाह ताला की क्या प्यारी बात है कि देखो, तुम मेरे एक प्यारे से दुश्मनी करोगे ना तो मैं तुमसे दुश्मनी करूंगा। सुभान अल्लाह। आपका कोई दोस्त ऐसे कहता है कि तुम मेरी दोस्त से अगर दुश्मनी करती हो, उससे बात नहीं करती, तो मैं भी नहीं तुमसे बात करती? कोई भी नहीं करेगा। वो कहेगा हमें क्या, उसके साथ होगा इसका लेन देन, मुझे क्या ज़रूरत है कि मैं किसी के साथ दुश्मनी डाल के बैठ जाऊँ। लेकिन अल्लाह ताला अपने दोस्तों की ऐसी कदरदानी करते हैं फिर, समझे? सुभान अल्लाह। अल्लाह हमें भी अपने औलिया में शामिल फरमा लेना, हमें अपना कुर्ब नसीब फरमा देना। अल्लाह हम इस काबिल तो नहीं है, अल्लाह तू हमसे ऐसे अमल करा लेना जिनसे तू राजी होता हो। फिर आगे देखिए, वलकद अनजलना इलैका आयातिम बय्यिनात, और अलबत्ता तहकीक नाजिल की हमने आपकी तरफ आयात बय्यिनात। कौन सी आयात हैं बय्यिनात? कौन सी रोशन आयतें अल्लाह ताला ने नाजिल की आपकी तरफ? आपकी तरफ का मतलब क्या, क्या का मतलब क्या है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ। तो कौन सी आयतें हैं? कुरान। अच्छा, यहाँ पे एक चीज नोट करें, सिर्फ ये नहीं कहा वलकद अनज़लना इलैका आयात, बल्कि क्या फरमाया? आयातिम बय्यिनात, रोशन आयात। रोशन आयात मैंने अभी आपको बय्यिना का माना भी बताया। क्या मकसद हो सकता है, आपके जहन में क्या बात आती है, बय्यिनात आयात क्यों उतारी अल्लाह ताला ने? क्यों कोई चीज बिल्कुल क्लियर करके, वाजे करके बताई जाती है? कोई रीजन होता है इसका कि कोई चीज बिल्कुल क्लियर क्लियर बताई जाए? जब आपको कोई चीज बिल्कुल ऐसे इजी करके क्लियर करके बताता है तो क्या मकसद होता है, बताएं उसका, ताकि आपको अच्छी तरह बात समझ आए। ऐसा ही है ना, ऐसा ही है। तो इसका मतलब है अल्लाह ताला चाहते हैं कि आप इन आयात को अच्छी तरह समझ लें, वरना अल्लाह ताला कोई आसमानी जुबान में भी कोई आयतें नाजिल कर सकते थे जिसको हम सिर्फ पढ़ सकते होते, सवाब हासिल कर लेते, लेकिन हमें समझ ना आती। तो लेकिन अल्लाह ताला ने ऐसा नहीं किया, उसने इस कुरान में हमारी बातें की जो हमसे ही मुतालिक हैं। कोई ऐसी हवाई मखलूक की बातें नहीं की जिनकी हमें समझ ही ना आए। देखिए, अल्लाह ताला की तो और भी क्रिएशंस हैं, पता नहीं और प्लैनेट्स पे और जगहों पे कहाँ कहाँ अल्लाह की मखलूकात हो, अब उनकी बात हमसे की जाती, हमें क्या समझ आनी थी? हमसे इजी टू अंडरस्टैंड बात की गई, आसमान की बात की, क्यों आसमान को हम देखते हैं, जमीन की बात की, जमीन के अंदर जो चीजें उनकी बात की, सूरज चांद की बात की, जिन जिन जो जो चीजें हमें नजर आती हैं हमें सामने, उनकी बात की गई और इनसे हमें समझाया गया बातों को ना, ताकि हमें सब चीज समझ आ जाए। अगर हमसे ऐसी किसी अल्लाह ताला अपनी क्रिएशन की बात करते जो हमारी अंडरस्टैंडिंग के बियॉन्ड होती तो हम समझ ही ना पाते। या ऐसी लैंग्वेज होती, ऐसे वर्ड्स होते जो पता नहीं किसी और मखलूक के वर्ड्स होते, हमें सारी जिंदगी हम मेहनत करते रहते, हमें समझ ही ना आती इसमें लिखा क्या हुआ। चलो रीड करना हम सीख भी लेते, लेकिन हमें समझ ना आती। लेकिन अल्लाह ताला ने बय्यिनात बना दिया, इसी से आप अंदाज़ा लगाइए कि इसी लिए बनाया ताकि मैं और आप समझ सकें। और यही काम हमने समझने का नहीं किया, हमने कभी ये तवज्जो ही नहीं दी कि हम इन आयात को समझ सकें। वलकद यस्सरनल कुरआन लिज़्ज़िक्र फहल मिन मुद्दकिर, अल्लाह ताला ने फरमाया मैंने इस कुरान को आसान कर दिया। अल्लाह ताला ने इतना आसान फरमाया, आसानी इसीलिए की ना ताकि आप इसे नसीहत ले सकें, समझ सकें, इसको इसे फ़ायदा उठा सकें। लेकिन हमने सिर्फ सवाब हासिल करने की किताब बना लिया इसको। सवाब तो मुश्किल अल्फाज में, कोई और ज़ुबान में भी कोई हो तो सवाब तो वैसे भी हासिल हो सकता है। हम अरबी में उस दिन से पढ़ रहे हैं, सवाब तो हमें मिल ही रहा है, लेकिन अल्लाह ताला ने बय्यिनात इसीलिए बनाया ताकि आप समझ पाएं। लेकिन देखिए हम नहीं इस तरफ तवज्जो करते। वमा यकफुरु बिहा इल्लल फासिकून, और नहीं कुफर करते साथ इनके मगर फासिक। फासिक कौन होते हैं? मैंने आपको फिस्क का पहले भी बताया था, जो इताअत से निकल भागे। फिस्क फासिक वही है ना जो इताअत से निकल भागता है, जिसमें बगावत का मादा होता है। तो इन आयतों को का इनकार सिर्फ वही बंदा करता है जो इताअत नहीं करना चाहता। समझ आई बात? जो हदों से निकलना चाहता है, लिमिट्स क्रॉस करना चाहता है। आप देख लें वाकई ऐसा है या नहीं है, है ना। इन आयतों का इनकार इसलिए नहीं किया जाता कि कोई किसी बेचारे को समझ ही नहीं आई, ओहो बेचारा इतना कुंजेन था या क्या मसला हुआ। नहीं, आयतें तो बय्यिनात हैं, वो तो बिल्कुल क्लियर हैं। इनकार की वजह ये होती है कि लोग अमल नहीं करना चाहते, लोग नाफरमानी करना चाहते हैं। जो फासिक होते हैं ना, फासिक वही है जो नाफरमान है ना, लोग नाफरमानी करना चाहते हैं इसलिए इनका इनकार करते हैं। आज भी देख ले मुसलमानों में कौन नहीं मानता इन आयतों को, मुंह से चाहे जुबानी ना कहें कि हम नहीं मानते, लेकिन अमल में या इस कुरान की तरफ आने से कौन लोग हिचकिचाते हैं? जो अमल नहीं करना चाहते, जो नाफरमानी की ही जिंदगी गुजारना चाहते हैं, जो अपनी जो पुरानी डगर है उस पर ही चलना चाहते, जो लिमिट्स क्रॉस करना चाहते। वरना ये तो गाइडेंस है, एवरीबडी नोज दैट, कि हमें कोई रास्ता दिखाएगा, सबको ये पता है, लेकिन वो उस रास्ते पे चलना नहीं चाहते। कहते हैं हमने नहीं चलना, हमने उसी पे चलना है जिस पे हम पहले से चल रहे हैं। तो वमा यकफुरु बिही, कौन नहीं कुफर करते इसका मगर कौन करते, जो फासिक। बात समझ आ गई है? तो आप अपने इर्द गिर्द देख लें, आप फासिकों को जितना मर्जी बुलाएं कुरान की तरफ, उन्होंने नहीं आना, उनकी नो नो है। अवकुल्लमा आहदु अहदन, और क्या जब कभी अहद किया उन्होंने कोई भी अहद, नबदहू फरीकुम मिनहुम, जब कभी उन्होंने अहद किया। एक हैरत का सा अंदाज है, क्या इनका तर्ज अमल यही है, क्या यही इनकी रविश रही है कि जब कभी उन्होंने अहद किया तो एक ग्रोह ने जरूर ही उसको पीछे फेंक दिया अहद शिकनी की, अहद की परवाह ही नहीं की कि हमने कोई अहद किया। वह नबजा क्या मैंने आपको बताया, गैर अहम समझ के फेंक देना। तो उन्होंने परवाह ही नहीं की कि हमने कोई अहद किया हुआ, दे डोंट केयर कि कोई अहद किया हुआ, हमेशा अहद को तोड़ते रहे। इनकी पुरानी यही हिस्ट्री चली आ रही है, दे हैव बीन डूइंग दिस। क्या जब कभी उन्होंने अहद किया तो उसको पीछे फेंका एक ग्रोह ने? बल अक्सरुहुम ला युमिनून, बल्कि उनमें से अक्सर ईमान वाले हैं ही नहीं, यानी अक्सरियत ईमान लाने वाली नहीं है। इसलिए कि पहले तो जो नबी आते थे कम से कम वो इसराइली तो होते थे, तो ये चलो कुछ ना कुछ उनकी मानने का कोई ना कोई चांस हो सकता था। अब तो और भी ज़्यादा इनके लिए मामला मुश्किल हो गया, क्योंकि अब तो मसला क्या हो गया कि इनकी कौमियत जो है ना इस पे ज़रब आई है, इनमें अना तकब्बुर है, इनको ये हो गया कि अब हमारे इसराइली में से क्यों नहीं आया, हमारे यहूद में से क्यों नहीं आया। अब तो ये बिल्कुल ही नहीं मानेंगे, इनकी तो पहले भी हिस्ट्री यही रही है। जब कहते हैं अच्छा हमने मान लिया, ये देखे मीसाक किया, हम अहद करते हैं, किताब को पकड़ेंगे मजबूती के साथ, कोई भी नहीं पकड़ा, तोड़ दिया इस अहद को। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मानने का अहद किया था, उसको ऐसे कर लिया जैसे कोई पता ही नहीं है कि ये कोई अहद किया। हमारा भी यही हाल नहीं है। अक्सर हमारे लोगों को तो यही नहीं पता कि हमारा कोई अहद भी है अल्लाह ताला के साथ, गैर जरूरी समझा है। और किताब के साथ कोई अहद है या नहीं है उसका क्या पता हमें। वलम्मा जाअहुम रसूलुम मिन इंदिल्लाह, और ये भी उनकी रविश बताई जा रही है कि जब उनके पास रसूल आए अल्लाह के पास है, मुसद्दिकुन लिमा माअहुम, जो तस्दीक करने वाला था उनके पास, जो है एक रसूल आया, जब आ गया उनके पास एक रसूल। एक रसूल कौन, नकिरा है ना ये, एक रसूल कौन, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और नकिरा का बाज दफा इसलिए भी लाया जाता है, यानी ये तनवीन है ना, ये बता रही है इसम नकिरा, किसी की अजमत बयान करने के लिए, ताजीम के लिए इसम नकिरा आता है, तो ताजीम के लिए भी यानी आता है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इसमें अजमत बयान की गई है कि जब भी, जब आ गया इनके पास, जब कभी नहीं, यहाँ पे जब आ गया इनके पास एक रसूल अल्लाह के पास, और वह रसूल क्या लेकर आया, जो तस्दीक करने वाला वास्ते उसके जो इनके पास है। इनके पास क्या थी, तौरात। रसूल आया और बार बार ये बात कही जा रही है कि वो तो उसको वेरीफाई करते हैं, वो तो ये कहते हैं कि ये जो किताब है ये अल्लाह की तरफ से है। देखिए, अगर आपके पास कोई चीज़ हो और कोई बंदा आए और आपकी चीज़ की तस्दीक करे और कहे कि वाकई ये इनके पास जो चीज़ है ठीक है, तो आपको तो लगेगा कि ये तो आपके साथ का है, ना कि आप उसके लिए दुश्मनी खड़ी कर लें। तो ये तो रसूल आए हैं जो बल्कि कह रहे हैं कि ये जो तुम्हारे पास किताब है वो सच्ची है, तो इसके ऊपर तो आपको और ज्यादा इनके सपोर्ट करना चाहिए, और ज्यादा इनके साथ खड़े होना चाहिए, इनके ऊपर ईमान लाना चाहिए कि ये आपकी किताब को ऑथेंटिक कह रहे हैं। लेकिन क्या हुआ, ना बाता फरीकुम मिन अल्लदीना उतुल किताबा, फेंक दिया एक फरीक ने, फिर वही नबादा की बात आई, एक फरीक ने जिनको जो दिए गए थे किताब, यानी किताब को कोई वैल्यू नहीं दी उन्होंने, कोई बात किताब की नहीं समझी, यानी इनके इनका तो वैसे तमाम ही अंबिया के साथ यही हाल रहा कि इन्होंने उनको झुटलाया, किसी को कत्ल किया, किसी को कुछ किया, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इन्होंने क्या मानना था। वो जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो किताब लेकर आए हैं जो इनकी किताब की भी तस्दीक करती है, लेकिन इन्होंने उसको भी गैर अहम समझा, बजाय इसके कि आगे बढ़ते और अपनी किताब को ही फेंक दिया। देखें, एक ग्रोह ने इनको जो किताब दी गई थी, इसके अंदर ये बात थी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक आखिरी नबी आने वाले, अपनी किताब को इन्होंने फेंक दिया, इसलिए कि अपनी किताब का ही ये बात को इन्होंने गलत किया, अपनी किताब की बात को भी नहीं इन्होंने माना। किताब अल्लाह वरा ज़ुहूरिहिम, इन्होंने अल्लाह की किताब को अपनी पीठ पीछे डाल दिया। का अन्नहुम ला यालमून, गोया कि वो जानते ही नहीं है, इनको जैसे कि इनकी किताब में कुछ लिखा ही नहीं हुआ, कुछ पता ही नहीं है कि इनकी किताब में कोई ऐसी भी बात है, ऐसे ये हो गए थे। पीठ पीछे फेंकने का मतलब क्या है, इनको तो क्या कहा गया था, खुदू भी कुव्वत, इनको कहा गया था ना भाई पकड़ो है कुव्वत के साथ, तो इन्होंने क्या किया, खुदू मातना कुंभ कुत वसमा, इनको ये कहा गया था, अब इन्होंने क्या किया, वराज हूरी हिम फेंक दिया। पीठ पीछे किस चीज को फेंका जाता है, पीठ पीछे फेंकने का मतलब ये नहीं कि उठा के फिजिकली उठा के फेंक दिया जाए, हाँ क्या मतलब होता है ये पीठ पीछे फेंकने का, यानी इसको यूजलेस समझा, इसको कोई वैल्यू नहीं दी। आप देखें ना, आप कहते हैं कि तुमने तो यहाँ तुमने तो फेंका हुआ इस चीज को, यानी उसको बिल्कुल ही कोने में लगाया हुआ है, अब उसको ना यूज करती हो ना तुम कुछ करते हो, तो तुम कहते हो तुमने यहाँ पे मेरे तो तोहफे को तुमने उठा के फेंक दिया। हालांकि ये नहीं कि उसने कोई गार्बेज में फेंका होता है, बल्कि क्या होता है, यानी कि तुम उसको कोई तुमने उसको इस्तेमाल ही नहीं किया, एक तरफ फेंक के रखा हुआ। तो उन्होंने तो ऐसा किया था, वो हामिले किताब थे, जो अल्लादीना ऊतुल किताब दिए गए थे किताब, वो हामिले किताब थे, फिर भी उन्होंने ये काम किया बेपरवाही की किताब के साथ। हम क्या कर रहे हैं, हमने तो नहीं पीठ पीछे फेंका हुआ, नहीं हम ते तो बहुत ऊपर शेल्फ में रखा हुआ है वहां पे, ताकि हमारा हाथ ही ना पहुंचे, ना कभी हम उसको पढ़ सके। और आज घूरी हिम तो नहीं हमने फेंका आज 70%, चलो 90% ना सही, 70% मुसलमान ऐसे हैं कि सिवाय इस बात के जानने के कि ये कुरान है, अल्लाह की किताब है, इसके सिवा उनको कुछ नहीं पता कि इस कुरान में कंटेंट क्या है, उनको कुछ नहीं पता कि इसमें लिखा क्या हुआ है। 70% मुसलमान। अब ये मैं बहुत मोहतात फिगर भी दूं तो 70% है, अदरवाइज आप कह सकते हैं 90% भी कह सकते हैं, नहीं पता, जानते ही नहीं। तो उन्होंने किताब को आगे रखा, मजबूत पकड़ा है, या फिर उन्होंने फेंका हुआ पीठ पीछे। पीठ पीछे वो चीज होती है ना कि बस आपको वो नजर भी नहीं आती जो आपके पीठ पीछे होती है। अब यानी है तो सही वो, लेकिन वो ऐसी जगह पे है कि जो आपकी साइट से यानी रीच में नहीं है। तो यही कुरान का हाल है तो सही हमारी घरों में, लेकिन क्या हमारी नजर के आगे नहीं है, वहां पर डाला हुआ है कि ना पढ़े, ना समझे, ना सीखे, और अमल के लिहाज से भी पीछे है। इसको तो इमाम बनाना था, वजाल हु इमाम व नूर व हुदन, ये है दुआ, अल्लाह इसको मेरे लिए इमाम बना, यानी कि मैं इसको फॉलो करूं। तो हमने क्या किया, इसको पीछे कर दिया, इमाम तो नहीं बनाया, इसको आगे तो नहीं रखा। और अन्नहुम ला यालमून, क्या हम भी ऐसे नहीं होगा जैसे कि पता ही नहीं है, कुछ पता ही नहीं कि ये कुरान में क्या लिखा हुआ है, इतने दूर हो गए अल्लाह की किताब से कि ये भी नहीं पता कि कोई इसके अंदर कोई बात इस किस्म की है भी या नहीं, कोई ये हुक्म है भी या नहीं, कुछ नहीं पता। जिंदगियों से किताब ऐसे निकल गई है जैसे किताब मिली नहीं है हमें, कोई अहमियत नहीं है इसको सीखने की, इसको समझने की, इसके साथ वक्त लगाने की कोई अहमियत नहीं है। आप खुद मुझे बताइए, जितना आपने टाइम अपनी इंग्लिश सीखने में, उर्दू सीखने में, या अपनी स्कूल और कॉलेज में लगाया, उससे आधा भी आपने इस किताब को दिया है वक्त, आधा। मैं नहीं कहती उतना ही आप साल लगाए हो आपने, लेकिन उसका आधा भी दिया, उसका क्वार्टर भी देते ना अगर आप, तो ये सीख जाते। लेकिन हम इतना सा भी वक्त इसको देने को तैयार नहीं है। हाँ कहेंगे, मुंह से जरूर बोल देंगे, हाँ अल्लाह की किताब है, बड़ी रहमत है, बड़ी बरकत है, बड़ी ये है, वाकई हमने, क्योंकि इसको इसका मकसद हमने यही समझा हुआ है कि ये तावीज़ों के लिए फिक्स कर ली है, या फिर इसकी आयतों को घोल घोल के हमने पीना है, और वो भी प्रिंट आउट ले लेके फिर उनको दे देते हैं लोगों को, ले इसको पानी में डाल डाल के ना तो पीते जाओ, या फलां सूरत पढ़ लिया करो ये मसले हल हो जाएंगे, यानी मसलों को हल कराने की किताब है, या गले में लटका लो बलाओं से महफूज हो जाओगे, या दीवार में लोहे कुरानी के नाम से हरूफ लिख के लटका देते हैं हमारे घर महफूज रहें, और सारी जिंदगी जो बंदा कुरान को कभी ना खोले ना पढ़े, और ना कभी उसने जरूरी ख्याल किया हो, जब वो मर जाए तो उस पे कुरान पढ़ लो और समझो कि जाने वाला बख्शा गया। क्या इन्हीं मकासद के लिए किताब उतरी है वाकई? अपने दिल से पूछ के बताएं, क्या वाकई, क्या इसी तरह कुव्वत से पकड़ा जाता है? क्या ये आप मजबूती से पकड़ रहे हैं इसको? किस मकसद के लिए ये किताब आई और हमने इसको क्या बना दिया? ये तो हुदा हुआ बुशरा है लिल मुमिनीन, क्या हमने हिदायत की किताब समझा इसको? आप देखेंगे कि जितने हम सारी बात पढ़ रहे हैं ना बनी इसराइल की, किताब की अहमियत इसमें कितनी पता चल रही है, आप बताइए। किताब किताब बार बार एक ही बात है। और आप देखें, वो लोग भी कहते थे, उन्होंने कहा था कि हम तो बस अपनी किताब के ऊपर ईमान लाएंगे, हम इस कुरान पे नहीं ईमान लेकर आएंगे। आयत नंबर 91 में आप देखें, इतना उनके यहां तासुब था कि हम बस अपनी किताब के ऊपर ईमान लाएंगे, हमने कुछ और, हमने इसके अलावा कुछ और का हम इनकार करेंगे। हमारे पास ऑलरेडी हक है, हम ऑलरेडी बहुत जानते हैं, ये तो किताब उनके लिए है जो पहले से हक पे नहीं है, जिनको पहले से कुछ पता नहीं है, जो उनको हक की जरूरत है, तो वो इसको इसके ऊपर ईमान लाएं, वो इसको लें, हमें हमें क्या इसकी जरूरत है? क्या आज मुसलमानों का भी यही रवैया नहीं है? हम भी क्या यही नहीं समझते कि हम तो हक पे हैं, हमारे माँ बाप, हमारे फलां, हमारे तो, हम तो मुसलमान हैं ही, हम तो ऑलरेडी इतनी नेकी के काम करते ही हैं, तो हमें क्या जरूरत है अब किताब पढ़ने की? किताब उनको सिखाओ, उनको जाके पढ़ाओ जिनको कुछ पता नहीं है। हमें नमाज रोजा क्या हमें नहीं आता? आप हमें क्या बताएंगी? और हमें पहले से सब कुछ पता है। और अगर पूछें कि आपने अल्लाह ताला की किताब वो कितनी दफा पढ़ा, समझा, सीखा, कहते हैं उसकी क्या जरूरत है, कौन सी नई बात है इसमें जो हमें पहले ना पता हो, कौन सी नई बात है? क्या वही रवैये नहीं है? क्या हूबहू वही रवैये हैं? एक-एक बात आप देख लें वही है। दुनिया के मामले में हम कितने अकलमंद हैं कि कोई डिग्री किताब पढ़े बगैर नहीं हासिल की जा सकती, मगर दीन की समझ हम समझते हैं कि अल्लाह की किताब पढ़े बगैर ही हमें सारा दीन आता है, हम तो बस पूरे दीन पे चल रहे हैं, पूरे मुकम्मल हैं, हमें क्या आप बताएंगे, हमें तो सारा पता है, वो किताब के बगैर ही सब पता है। तो हमें इन सारी आयात में, यानी हम पीछे से देख लें, आप आयतों को दोबारा भी पढ़िएगा, किताब की अहमियत बार बार उजागर हो रही है, बार बार हमें ये याद दहानी कराई जा रही कि किताब से ताल्लुक कितना अहम है। और अल्लाह ताला ने पिछली उम्मतों से तो यानी मीसाक ले लिया इस किताब को, जो अल्लाह की तरफ से किताब आई थी मजबूती से थामने का मीसाक ले लिया, तो हम किधर बच के जाएंगे किताब को छोड़ के? हम बच सकते हैं क्या? हम इसके बगैर निजात पा सकते हैं क्या? फिर भी अगर आप किताब को गैर अहम समझें, फिर भी अगर आप ये समझ दें कि किताब की जरूरत नहीं है आपकी जिंदगी में और ये एक फालतू चीज है और एक ये फारिग वक्त का मशगला है, नहीं, इसके बगैर तो आप राह पा ही नहीं सकते। यही है गाइडेंस, यही है रहनुमाई। इसलिए इस किताब के साथ ताल्लुक और मजबूत ताल्लुक बहुत जरूरी है, और उसके लिए चाहे आपको मेहनत करनी पड़े, टेस्ट देने पड़े, ग्रुप एक्टिविटी करने लगे, इस सबको अपने लिए सआदत समझे, ऑनर समझे। आप देखें एक बड़ी यूनिवर्सिटी के अंदर अगर किसी को आईवी लीग की कोई यूनिवर्सिटीज हैं, बड़े बड़े नाम है, वहां पे किसी को पता चल जाए कि वहां पे उसका दाखिला हो गया, वो कितना फख्र महसूस करेगा, कितनी अपनी खुशकिस्मती समझेगा ना, लोगों को बढ़ बढ़ के बताएगा, आपको पता है मेरा दाखिला वहां पे हो गया, मैं इतने लोगों में से सेलेक्ट हो गई हूं, मुझे उन्होंने एडमिशन दे दिया। और अल्लाह की किताब, अगर आप उसके लिए चूज हो गए, मिलियंस एंड मिलियंस लोग हैं इस दुनिया में और उनमें से अल्लाह ताला ने आपको चुना है अपने इस कलाम के लिए, तो ये कौन सी प्रिंसटन और कौन से हार्वर्ड और कौन सा कोई और यूनिवर्सिटी इसका मुकाबला कर सकती है इस कलाम का, बताइए मुझे। ये तो सबसे बड़ी शहादत है, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल्लाह के इस कलाम की जो अहमियत और जो इसका मकाम है वो दूसरे उलूम के मुकाबले में ऐसे है जैसे अल्लाह ताला अपनी मखलूक के मुकाबले में। अल्लाह और उसकी मखलूक का कोई मुकाबला है? कोई मुकाबला है बताएं? तो इस कुरान का मुकाबला अगर आप दूसरे तमाम उलूम के मुकाबले में करें ना, तो ऐसे ही कंपैरिजन है जैसे अल्लाह ताला और उसकी मखलूक का। तो किधर किधर की बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियों के भी आप नाम ले लें या अपनी डिग्रियों के नाम ले लें, मुझे मेडिकल में एडमिशन मिल गया, मुझे फलानी जगह में मिल गया, मुझे उसमें मिल गया, जितनी भी बड़ी डिग्री में आपको एडमिशन मिल जाए, मगर वो सब हीच है इस कुरान के मुकाबले में, कुछ भी नहीं है। स्टिल हमारा ये हाल है कि उन पे हम फखर करते हैं और इस कुरान की तरफ आने पे इसको हम कुछ समझते ही नहीं और बहाने बहाने से इससे निकलने की कोशिश करते हैं, यानी बजाय उल्टा कि इसको अपने लिए सआदत समझते, इस पे शुक्र अदा करते, इस पे अल्लाह के आगे झुक जाते, उल्टा हमारा क्या रवैया है कि हम ये बहाना ढूंढ रहे हैं कि किस तरह से हम इससे निकलें, किसी तरह से हम इसे आजादी पा लें। तो अल्लाह ताला हमें इस कुरान की कदरों कीमत करने की तौफीक अता फरमाए। तो इस कुरान की कदर करना सीखिए, इसको फालतू ना समझिए, और अल्लाह ताला जो आपको इल्म दे रहा है ना इस किताब का, इसको समझे कि बहुत बड़ा ऑनर आपको मिला है, आप चोजन वंस में से हैं। जब तक आप ऐसा नहीं समझेंगे ना, आप शायद कोई भी वैल्यू ना दे सकें اس اپنی تعلیم کو. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک 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 و نتوب الیک. تلاوت سنتے ہیں.
وَلَقَدْ جَاءَكُمْ مُوسَى بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ. وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاسْمَعُوا قَالُوا سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ بِكُفْرِهِمْ قُلْ بِئْسَ مَا يَأْمُرُكُمْ بِهِ إِيمَانُكُمْ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ. قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين. ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين. ولتجدنهم أحرص الناس على حياة ومن الذين أشركوا يود أحدهم لو يعمر ألف سنة وما هو بمزحزحه من العذاب أن يعمر والله بصير بما يعملون. قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين. من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين. ولقد أنزلنا إليك آيات بينات وما يكفر بها إلا الفاسقون. أوكلما عاهدوا عهدا نبذه فريق منهم بل أكثرهم لا يؤمنون. ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون.